छंद पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 17 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंता नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो वैच्छायाणम नमो लोहे सौवसाहूरम भूतबलि प्रणीतं तं बंधतत्व प्रकाशकम् महाधवल विख्यातम् महाबंधम्
नमामि।
यह श्री भगवान भूतबली भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें दूसरी पुस्तक में दूसरा जो सिद्धि बंधाधिकार है उसको देखते हुए हम पृष्ठ संख्या 70 पर आ गए। 70 आपका प्रश्न है, अभी जो हमने मंगलाचरण जो देखा है भूत बलि प्रणीतम, भूत बलि के द्वारा प्रणीत यानी बताया हुआ लिखा हुआ, तम यानी वह, उसको बंध तत्व प्रकाशकम,
बंध तत्व जो बात बताई उसमें बंध तत्व का प्रकाश किया
जी। ये सारे विशेषण बनाए किसके, महाबंध के। ये महाबंध कैसा है या वो महाबंधम वही विभक्ति जहाँ जहाँ लगी है वो सारे उसके विशेषण है। तो ये महाबंध नाम का जो ग्रंथ है वो भूत बलि प्रणीत है, तम यानी उसको, यानी उसको नमामि अहम, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। तो तम वो कहीं पर भी लिख सकते हैं उसको, यानी भूत। ये कैसा है महाबंध, तो भूत बलि प्रणीत है। बंध तत्व प्रकाशकम यानी बंध तत्व का प्रकाशन करने वाला है। महाधवल विख्यातम, महाधवल नाम से प्रसिद्ध है उसको, यानी उस महाबंध को मैं नमस्कार करता हूं। अब यहां हम आते हैं 70 पृष्ठ पर। अभी तक हमने अंतर प्ररूपणा में उत्कृष्ट बंध का अंतर देखा, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट में जघन्य अंतर उत्कृष्ट अंतर देख लिया। अभी यहाँ अपना जघन्य अंतर काल की प्ररूपणा शुरू हो गई। तो ओघ में जघन्य अंतर की बात हम देखते हैं, तो ओघ में 7 कर्मों का जघन्य बंध कहाँ होता है, तो कहते क्षपक में सूक्ष्म सांप्रदाय के अंत में। तो कहते जघन्य का अंतर नहीं हो सकता, एक बार जघन्य हो गया तो उसके बाद बंध का नाश ही हो गए, बंध रुक ही गया। स्थिति बंध की बात है ना, स्थिति बंध वहीं तक है, उसके बाद स्थिति बंध ही नहीं है। तो कहते हैं कि उसके बाद फिर दोबारा जघन्य होने का सवाल नहीं है, इसलिए जघन्य का अंतर नहीं है। तो कहते हैं अजघन्य कब से, तो अनादि से चल रहा था, और जब जघन्य होता है तो अजघन्य समाप्त होता है। तो अजघन्य का अंतर कैसे घटित हो सकता है, तो कहते हैं हाँ, जब वो 10वें से 11वें में जाता है उपशम श्रेणी में, तब उसका बंध रुकता है, और वापस जब 11वें में आएगा तो बंध शुरू होगा, तो अंतर्मुख होगा। परंतु जो 11वें में एक समय में मर जाता है, तो उसके एक समय के लिए बंध नहीं था, फिर वो मरकर 4थे में गए देव में, तो वहां बंध शुरू हुआ, वो भी अजघन्य है। तो अजघन्य का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त घटित होता है। ये ओ की बात है हमने देखी। आयु कर्म में भी उन्होंने बताया था कि जघन्य स्थिति बंध का जघन्य अंतर, जघन्य अंतर कब होगा,
अंतिम समय में, अंतिम बंध के काल में,
यानी आयु बंध के अंतिम समय में उसका जघन्य होता है। वो भी जिसके असंक्षेपात है उसके होगा। फिर दोबारा लब्ध पर्याप्त का भाव किया, और फिर उसने जगन्य बांधने के लिए वही लास्ट समय में असंक्षेपाध्याय किया।
हाँ,
तो वो पूरा ही एक छिद्र हो उसमें एक समय कम करना, जिस समय वो जगन्य का बंद कर रहा था वो समय घटा देना उसमें से। और उत्कृष्ट कितना हो सकता है, यानी जगन्य का उत्कृष्ट अंतर, जब जगन्य बंद किया आयु का, तो आयु का जगन्य बंद किया उसका अर्थ क्या है, असंक्षेप बाध्या काल बाकी रखकर लब्धिया पर्याप्त का उसने बंद किया, उसका अंतिम समय में अंतर शुरू हुआ, लब्धिया पर्याप्त में उत्पन्न हुआ, फिर उसने अन्य अन्य आयु बांधी, जगन्य बांधी ही नहीं, पर्याप्तों में ही घूमता रहा, यानी लब्धि पर्याप्त की आयु बांधेगा तो जगन्य बंद होगा, उसने बांधी ही नहीं तो क्या किया उसने, एक बहुत तो लब्धि पर्याप्त का किया, परंतु उसमें आयु जो बांधी वो अजगन्य बांधी, पर्याप्त की बांधी, तो पर्याप्त 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 लगातार पर्याप्त में रहा, तो कितने काल तक, तो एक पर्याप्त का काल है संख्यात हजार वर्ष, बीच में अपर्याप्त ना हो, और त्रस पर्याप्त का काल है 2000 साल। हाँ, तो इसलिए यहाँ साधित कहेंगे तो त्रस का अपर्याप्त आ जाएगा, त्रस का अपर्याप्त आएगा, ये दोनों मिलकर साधिक 2000 साल, दोनों मिलकर एकेंद्रीय के पर्याप्त और त्रस के पर्याप्त, नहीं संख्यात हजार वर्ष,
2000 साल,
साधिक 2000 साल हो, जगन्य आयुबंध का उत्कृष्ट अंतर, यानी बाद में वो अपर्याप्त में जाएगा ही जाएगा, लब्धि अपर्याप्त में आयुबंध करेगा। अब आयु के अजगन्य स्थिति बंध, यानी कभी भी हो सकता है, अभी आयु का बंध किया और रुक गया, तो अजगन्य स्थिति बंध का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त है, क्योंकि अंतर्मूर्त वाले अन्य पर्याय पाप करके फिर उसने, हाँ, या दो अप्रश्न काल के पीछे वाला भी हम अजगन्य कह सकते हैं, और उत्कृष्ट अंतर साधित 33 सागर अजगन्य का, साधिक ही का है ना, साधिक 33 सागर कैसे हुआ, उत्कृष्ट बंध किया, उत्कृष्ट को भी अजगन्य ही करेंगे, और बाद में भी वो उन्हें बंद करके रुक गया तब अजगन्य का अंतर चालू हो गया। 33 सागर की आयु बांधी, 33 सागर की आयु का बंध किया अंतर मुहूर्त तक, जब बंध रुक गया तो अजगन्य का अंतर शुरू हुआ, उस भाव में आयु नहीं बांधी, यानी यहाँ एक तृतीयांश वन थर्ड पूर्व कोटि, अभी वो अंतर मुहूर्त माइनस कर देना उसमें से, फिर 33 सागर के देव में गया, वहां 6 महीने पहले नहीं बांधा, अंतिम अपकर्ष काल में बांधी, तो इतने लंबे काल तक आयु ही नहीं बांधी, तो अजगन्य आयु बंध का उत्कृष्ट अंतर, यहां तक तो हमने कल पढ़ा था, अभी उसका ही विशेषार्थ हम देख रहे हैं, 70 पृष्ठ है, 70 विशेषार्थ, ओग से 7 कर्मों का जगन्य स्थिति बंध क्षपक श्रेणी में होता है, इसलिए यहाँ 7 कर्मों के जघन्य स्थितिबंध के अंतर का निषेध किया है। जो जीव उपशम श्रेणी में 7 कर्मों का एक समय के लिए अबंधक होकर दूसरे समय में मरण कर पुनः उनका बंद करने लगता है, क्योंकि वो चौथे गुण स्थान में जाता है तो बंद फिर शुरू हो जाता है, उसके 7 कर्मों के अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य अंतर काल उपलब्ध होता है, कितना, तो एक समय, जगन्य अंतरकाल कितना कहा, एक समय। अब कहते हैं, और जो अंतर्मूर्त के लिए अबंधक होकर, यानी पूरे 11वें गुणस्थान का काल पुनः उनका बंद करता है, उसके 7 कर्मों के अजगन्य स्थिति बंध का उत्कृष्ट अंतरकाल उपलब्ध होता है, मन जो ये कितना है, हाँ, 7 कर्मों का अजगन्य बंध का उत्कृष्ट अंतर, ये बताए ना, हाँ, देखो फिर पढ़ो, विशेषार्थ की 4थी लाइन पहले पढ़ेंगे, सात कर्मों के अजघन्य स्थिति बंध का जघन्य अंतरकाल उपलब्ध होता है। किसके? जो ग्यारहवें गुण स्थान में एक समय में मरता है उसके। अब कहते हैं जो अंतर्मूर्त के लिए अबंधक होकर पुनः बंध करता है, कौन सा अंतर्मूर्त है ये? यानी केवल यहाँ अंतर्मूर्त लिखा है इसलिए अंतर्मूर्त नहीं कहना। दसवें गुणस्थान के उपशम श्रेणी में अंत में उसने बंद किया, जघन्य था कि अजघन्य था? अजघन्य था। ग्यारहवें में क्या हुआ? बंद रुक गया। फिर वापस दसवें में आए तो क्या हुआ? बंधा। तो अजघन्य का अंतर कितना हुआ? अंतर्मूर्त। कितना बड़ा अंतर्मूर्त? ग्यारहवें गुणस्थान ही था। हाँ, मोहनी के लिए ज्यादा, मोहनी के नौ से नौ तक लेना, फिर भी उसको कथन का अंतर्मूर्त होगा। ख्याल में आई बात? क्योंकि हम केवल पढ़ना नहीं है तो भाषित होना चाहिए कि कहाँ की बात चल रही है। इसी से यहाँ अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त का। आयु कर्म का जघन्य स्थितिबंध क्षुद्रक भवग्रहण प्रमाण है। एक जीव ने पूर्व भूमि में जघन्य आयु का बंध किया। हमने जघन्य आयु कब बंद की है? तो संक्षेप आधार हो तो उसके अंतम आयु बंध के अंतिम समय में। वहां पुनः वही जीव दूसरे भूमि में उसी समय जघन्य आयु का बंध करता है। क्षुद्र भव की बात की तो उस क्षुद्र भव वाले जीव ने भी ऐसी जघन्य आयु बांधी। इसी वंतर ने एक असंक्षेप काल जघन्य की बात है ना, अभी उत्कृष्ट की नहीं।
अभी उसने जो जघन्य क्षुद्र भव में था उसके भी वंतर आयु बाकी रहेगी जब भी बंद होगा ना?
नहीं, उसको भी लास्ट में, क्योंकि जघन्य बांधनी है ना।
दूसरे
वही तो कह रहे हैं ना, तभी तो जघन्य हो गया, अदरवाइज नहीं होगी।
अच्छा,
तो पूरा भव हो गया ना, पूरा भव माइनस एक समय घटित हुआ। उसको भी नहीं, नहीं उसको भी लास्ट में ही कराना है। जघन्य बांधनी तो उसको भी लास्ट में ही कराना है। अजघन्य होते तो हम पहले शुरुआत में सोचते। आपने लिया 45 मिनट समय की आयु है, मान लेते हैं हम 45 समय की आयु है। जघन्य आयु कब बंधेगी? नहीं, वो जघन्य नहीं बंधेगी। जघन्य बांधने के लिए यहाँ पर असंक्षेपात काल में, यानी मान लेते हैं अंत से तीसरा समय उसका, आखिर में ही बांध रहे हैं। और आखिर में जो बंध शुरू हुआ वो बंध शुरू होने के अंतिम समय में लेना, जब आयु बंध रुकने वाला है तब उसका जघन्य हुआ। फिर वो दूसरे लब्धि अपर्याप्त में गया, वहां भी जघन्य बांधना है तो अंतिम ही समय वो ले लेना।
ये रूल मुझे मालूम नहीं था। हाँ, हाँ। शुरू में बांधेगा तो उत्कृष्ट अधिक बांधेगा,
अधिक बांधते हैं, लास्ट में कम बांधता है। तो यहाँ पर भी उसने उतनी आयु बांधी और यहाँ का एक समय तो उसके जघन्य बांधने में गया था और यहाँ बांधते ही उसके अंतर समाप्त हुआ, इसलिए वो एक समय उस लब्धि अपर्याप्त का जितनी जो क्षुद्र भव का काल है उसमें से एक समय कम करता है। एक इस ये जघन्य उत्कृष्ट में भी हमने ऐसे देखा था, पूर्व उत्कृष्ट में हमने पूर्व कोटि एक समय कम पूर्व कोटि लिया था और फिर वो एक भव करना पड़ता है इसलिए बीच के 10,000 वर्ष लिए। समझ में ना, इसी से आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का जघन्य अंतरकाल मिला आपको भाई। एक समय कम क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण कहा है। क्षुद्रक कहते हैं, कहीं क्षुद्र कहते हैं, कहीं शुल्लक कहते हैं, सभी बातें आती हैं। अब यहाँ जघन्य आयु बंध का उत्कृष्ट अंतर देखने जा रहे हैं। तो त्रस पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल साधिक 2000 सागर है। एक्चुअली त्रस पर्याप्त में तो साधिक सादिक नहीं लेना, 2000 सागर लेना।
इसलिए आप उस तरह से पर्याय में लिखा
है। वो बराबर नहीं, किसी जीव को इतने काल तक जघन्य आयु का बंधन नहीं होता। त्रस पर्याप्त चाहिए और वो साधिक निकाल देना, और एकेंद्रिय भी पर्याप्तम चाहिए। त्रस और एकेंद्रिय के पर्याप्त में रहा हो। देखो स्थावर और त्रस बस पर्याप्त में रहा, दोनों के मिलकर पर्याप्त कहेंगे तो साधिक रखना है, क्योंकि वो तो उन्होंने बताया है। बोल रहे आपका क्या प्रश्न है? एक इंद्रियों की होगी, क्योंकि उसके एक अंतर्मुहूर्त में 66,000 हो गए। फिर भी क्षुद्र वो जब कहेंगे हम एक श्वास में 18 से बाहर, वो सबके लिए समान काल हो। क्यों अरविंद भाई, एक इंद्रिय क्या ये छोटी है क्षुद्र भाव की? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो लगातार इतने भोग हो सकते हैं, उतनी बात है। यहाँ जो लिखा ना त्रस पर्याय में, एक्चुअली त्रस और स्थावर के पर्याप्तों में, रहने का उत्कृष्ट काल साधिक 2000 सागर है। त्रस के आगे पर्याय लिखा ना, तो पर्याय में के बदले और स्थावर के पर्याप्तों में, स्थावर को भी उसमें ले लेना। एक इंद्रिय पर्याप्तों में चला गया है तो उसने जघन्य आयु की, वो लगातार पर्याप्तों में ही रहा, उसका अर्थ है उसने अपर्याप्त की आयु बांधी ही नहीं। हाँ, 70 नंबर का पृष्ठ है विशेषार्थ की, नीचे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर की लाइन। त्रस पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल साधिक 2000 सागर है। अब यहाँ बात चल रही थी कि आयु का जघन्य बंद करने वाला कौन है, तो जो लब्धि पर्याप्त की आयु बांधता है वो। तो उसने एक बार लब्धि पर्याप्त की आयु बांधी, लब्धि पर्याप्त में चला गया, फिर बाद में उस लब्धि पर्याप्त जीव ने पर्याप्त की आयु बांधी, जघन्य आयु बांधी नहीं। तो जघन्य आयु बांधेगा ही नहीं, ऐसे लगातार कितने काल तक हो सकता है? क्योंकि देखो पर्याप्त की ही आयु बांधता रहा, पर्याप्त में ही रहा, पर्याप्त का जन्म ही नहीं धारण किया। तो त्रस के पर्याप्तों में रहने का काल 2000 साल है, और एकेंद्रीय पर्याप्तों में रहने का काल संख्या 1000 वर्ष, तो मिलकर साधिक। हाँ,
तो आपको ऐसा वहां लिखना है त्रस के बाद और स्थावर के
पर्याप्तों में,
और पर्याय लिखा है उसमें
पर्याप्तों में,
क्योंकि जो
त्रस की बात ही नहीं है,
त्रस
और सावर पर्याप्तों में।
पर्याप्त की आपने संख्या 1000 ले ली,
अकेले त्रस पर्याप्त कहेंगे तो 2000 साल, परंतु एक इंद्रिय के भी पर्याप्त ही बोल लेना है। तो जो कुछ यथा योग्य होता होगा उनका एक इंद्रिय ऐसा ऊपर नीचे सावर त्रस का बढ़ भी जाएगा, फिर भी वो साधिक 2000 साल के।
त्रस का मतलब बोलते हैं त्रस के 2000 सागर,
पर त्रस के भी अपर्याप्त है, अपर्याप्त में भेजना नहीं है, तो वो फिर क्षुद्र वो बांधेगा, इसलिए उसको बीच में अपर्याप्त अवस्था ही नहीं लाना है।
त्रस की पर्याप्ति के बने,
त्रस के मात्र पर्याप्त और एक इंद्रिय के भी मात्र पर्याप्त है, तब भी ये बात घटित होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्योंकि यही कारण है कि जघन्य आयु के स्थितिबंध का उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 2000 सागर कहा है। जघन्य स्थितिबंध के सिवा अजघन्य स्थितिबंध है, जिसका जघन्य नहीं है वो अजघन्य है, इसका जघन्य अंतर अंतर्मूर्त अभी इसमें भी अंतर्मूर्त में कौन सी ले सकते हैं?
पहले समय नहीं, जगनी हुआ उसके आगे का समय होता है।
अभी आप गुजराती का आगे का और हिंदी का आगे देखो, एक शुद्र भव उसने लास्ट में असंख्य पादा के पहले जगन्य बंद किया था, उसके पूर्व में उसने अजगन्य किया। प्रति समय घटता चला जाता है, तो एक समय पहले उसने अजगन्य किया था। नहीं नहीं, आयु की बात चल रही है। असंख्य पादा के एक समय पूर्व जगन्य किया था, उसके पूर्व में अजगन्य किया था। अब उसने वो लब्धि पर्याप्त की आयु बांधी है, तो यहाँ तो लास्ट लास्ट में किया, तो यहाँ तो लब्धि अपर्याप्त के जो है वंतर, तब यहाँ उसने आयु बांधी, वो तो जगन्य नहीं कहलाएगी, अजगन्य नहीं कहलाएगी। तो यहाँ की टू थर्ड लब्धि अपर्याप्त की आयु, और यहाँ का आयु बंध का काल प्लस असंख्य पाद, यानी शुद्र भव से भी एक कम होगा फिर भी अंतर्मुख कहलाएगा। ख्याल में आई ना बात? देखो, ये एक शूद्र भव है, एक शूद्र भव है, इसमें उसने जगन्य आयु कब बनती है, तो असंख्य पाद के पहले जब आयु बंध समाप्त होता है तब जगन्य हुई, उसके एक समय पूर्व तक अजगन्य थी, तो अजगन्य बांधी। आयु का बंध, आयु का बंध लगातार अंतर्मूल तक होता है, और वो प्रति समय स्थिति बंध घटता चला जाता है, अंत समय में उसका जगन्य हुआ था, तो उसके एक समय पूर्व 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 अजगन्य। तो अजगन्य करके उसने जगन्य किया, तो उसका अंत चालू हो गया। फिर दूसरा लब्धि
पर्याप्त जगन हो नहीं सकता है, वो तो अपसरण जो अपन बाद में करते हैं, घटा इश्क करते हैं।
बंधते समय जगन्य बंध की बात चल रही है, बाद में जो घटा इश्क होता है उसकी बात नहीं है, यहाँ बंध करते समय स्थिति बंध की बात चल रही है। मिनिमम स्थिति बांधी, लब्धि पर्याप्त की मिनिमम स्थिति बांधी उसने, तो वो कब हो सकता है? जगन्य आबादा के साथ अंतिम समय में हो सकता है, उसके बाद, उसके पहले उसने अजगन्य की, जगन्य की तो हमने बात देख ली थी, उसके पूर्व समय में उसने अजगन्य बांधी थी, अब दोबारा जगन्य नहीं बांध रहे, कोई भी आयु बांध रहे हो, वो अवसर कब आएगा? तो यहाँ तो ये अलब्धि अपर्याप्त का बोल दिया हमने,
उसका वन थर्ड,
तो उसके टू थर्ड बीत गया,
अजगन्य का जगन्य,
तो ये वही तो बताए ना,
टू
थर्ड बीत गया और वन थर्ड बाकी है, तब तो उसने आयु का बंध शुरू किया। जो कोई आयु बांधी तो उसकी अजगन्य कहलाएगी, लब्धि पर्याप्त के बांधे या पर्याप्त के, पहला समय तो अजगन्य ही है, तो यहाँ के टू थर्ड उसका क्षुद्र भव, और यहाँ का असंक्षेपाध काल प्लस जगन्य एक समय बांधी वो काल, और अजगन्य एक समय बांधी वो भी काल, तो दो समय और बढ़ा देना असंक्षेपाध्या में, और टू थर्ड लब्धि पर्याप्त कब, इतनी उसके जो अंतर्मूर्त होगा उसका,
इसकी अजगन्य आयु का,
अजगन्य का अंतर,
जगन्य आयु बंध का
अंतर,
अंतर
जगन्य अंतर,
ये संक्षेप समझाने के लिए संक्षेप तो बोला, लेकिन उस जिन्हें बांधी तो अजगन्य आयु है ना, सिर्फ
उसके पहले के
अंदर असंक्षेपता के एक समय पहले
जगन्य बांधी थी,
असंक्षेपता के एक समय पहले अजगन्य बांधी थी,
जगन्य बांधी थी
उसके,
और उसके एक समय पूर्व जगन्य अजगन्य बांधी थी,
पहले ना असंक्षेपता के पहले
आप नहीं समझे,
शुरू में काट देता है, शुरू में जो होता है वो मैक्सिमम होता है,
ये कोई आयु है,
ये पहला शुद्र भव है,
शुद्र भव उसने तो ये सब इसमें आयु नहीं बांधी, लास्ट में जाके आयु बांधी, तो आयु कितने समय तक बांधी मान लेते ना, छह सात समय तक बांधी, अंतर्मूर्त तक तो बांधता है, पहले समय में ज्यादा बांधता है, और प्रति समय वो स्थिति बंध घटते चला जाता है, अंतिम समय में उसने मिनिमम बंध किया, यह उसका जगन्य, उसके पहले के सारे समय में बांधा हुआ अजगन्य कहलाएगा, तो हमने ये वाला अजगन्य को लिया, अंतर देखना है, और ये जगन्य तभी करता है जब वो पहले त्रिभाग में जगन्य नहीं बांधता, वो तो लास्ट में अंतिम जो असंक्षय पादा के मिनिमम वाला बंध वहां पर होता है, जगन्य आबादा के साथ वो जगन्य स्थिति बंध करता है। तो वो जगन्य को छोड़कर उसके पूर्व समय में उसने अजगन्य किया था, इस पॉइंट से हमने अंतर चालू किया।
ये सब समझ में आ गया, नहीं समझ में क्या नहीं आया कि जैसे वो लास्ट में वायु बांधता है, अंतर मुर्तिले बांधता है, तो उसमें पहले समय में जैसे अजगन्य अजगन्य लास्ट में जगन्य कौन से आयु को लेकर
लब्धि पर्याप्ति की बांध रहा था, परंतु पहले समय में जितनी बांधी अंतिम समय में सबसे कम बांधी।
हाँ, तो आप कौन सी लेंगे, रिकॉर्ड कौन सी करेंगे अंतिम जो वाली?
नहीं नहीं, पहले वो भोगेगा तो जो पहले समय में किया वही भोगेगा,
वही
भोगेगा
तो वही।
ऐसा
नहीं आयु बांधता
है, वो कम आयु कम होती नहीं है, जो स्थिति बंध हर समय चल रहा है, कितने निषेक बनेंगे तो पहले समय में मान लेते उसने 45 निषेक बांधे, तो फिर 44, 43 ऐसे बांधे इतने, यानी हर समय उसके स्थिति बंध घटते गया, परंतु जो जितनी आयु बांधी है उतनी भोगेगा, उससे कुछ नहीं कम तो होने वाला है, ये बात है।
जगन्य का अंतर जो है लास्ट के एक समय पहले से लेकर अपने वहां तक का ले लिया।
हाँ, फिर नेक्स्ट टाइम जब उसने आयु बंध शुरू किया अर्लीएस्ट
जल्दी कराएंगे,
अभी जल्दी करेंगे त्रिभाग में। अजगन्य का जघन्य अंतर बता रहे तो जघन्य अंतर अंतर्मूर्त जो बताया है, इन्हें टू थर्ड क्षुद्र भाव लिया और प्लस असंक्षेपा था और प्लस दो समय लेना, एक जघन्य का और एक अजघन्य का, अंतर घटित करना है ना, अभी उत्कृष्ट अंतर जो जघन्य नहीं वो सारा ही अजघन्य है, तो उत्कृष्ट अंतर वंतर पूर्व कोटि में उसने उत्कृष्ट बंध किया, फिर तैतीस सागर की आयु बांधकर वहां चला गया, उसके छह महीने पहले आयु नहीं बंधी, लास्ट में बांधी जाती अंतिम उपकर्ष में बांधी, तो वहां नियरली पूरा तैतीस सागर, अभी अंतर्मुख कम कर दो उसमें से, और यहां वन थर्ड पूर्व कोटि, ये सब साधिक तैतीस सागर में आ गए। इसी से ये समझ में आई बात, यहाँ आयु कर्म के अजगन्य स्थिति बंध का यह अंतरकाल कहा है, आगे जहाँ ओघ के समान अंतरकाल आवे उसे इसी प्रकार घटित करना चाहिए। जब कहेंगे ओघ के समान तब ये बात हमको याद करनी है, अभी तो योग की ही बात चल रही थी अपनी, उसी का विशेषार्थ का, सात कर्मों में भी और आयु कर्म में भी। पूर्व भो ये देखो, एक करोड़ पूर्व का भव था, टू थर्ड पूर्व कोटि बीत गया, वन थर्ड बाकी है, तब उसने उत्कृष्ट बंध किया आयु का, तैतीस सागर का बंध किया, उत्कृष्ट है ना वो अजगन्य हुआ, जो उत्कृष्ट है उसको क्या कहेंगे, अजगन्य कहेंगे, अजगन्य कहेंगे। फिर उसने वो आयु का बंध किया, परंतु वो पहला समय नहीं लिया, आयु का बंध होकर रुका, क्योंकि तब तक अजगन नहीं चल रहा था ना, अंतर्मूर्त तक आयु बांधी, आयु बंध का अंतिम समय लेना, वहां से अंतर शुरू हुआ, उस भव ने उसने फिर दोबारा आयु नहीं बांधी, एक ही बार बांधी, फिर तैतीस सागर में उत्पन्न हुआ, फिर छह महीने पहले पहला अवसर आया आयु बंध का, तब आयु नहीं बांधी, त्रिभाग त्रिभाग चलते चलते अंतिम त्रिभाग में उसने आयु बांधी, लास्ट में अंतिम अपकर्ष काल, तो उसका ये जो है बीच में आयु का बंध किया ही नहीं इतने लंबे काल तक, तो वो तो उसका उत्कृष्ट अंतर हुआ साधिक तैतीस। अब हम आगे बढ़ेंगे आदेश से, असंक्षेपाध्या होगा कि नहीं होगा कहते देवनारकी में, आठ अपकर्ष हम अंतिम अपकर्ष काल इतना ही कहेंगे, उसमें नहीं होगा मेरे ख्याल से असंक्षेपाध्याय, आठ उपकर्ष, इसलिए मैं हमेशा अंतिम उपकर्ष में कह रही हूँ, हम अपनी ओर से असंक्षेपाता नहीं जोड़ेंगे उसमें, अंतिम जब कभी होता है आयु का बंधन तब उसको कहेंगे। अब नारकियों में देखना है, आदेश से नारकियों में सात कर्मों के जघन्य और अजघन्य स्थिति बंध का अंतरकाल नहीं है। तो जेपी साहब, नारकियों में जघन्य स्थिति बंध कब हो रहा है?
तो असंगी से अपना।
हाँ, असंगी से जो उत्पन्न होता है उसका जघन्य है, तो शुरुआत में ही जघन्य किया उसने, वापस फिर अजघन्य करके फिर जघन्य करने का मौका ही नहीं है उसको। अंतर नहीं है, अंतर की बात चल रही है, तो बाकी तो थ्रू आउट लाइफ उसकी तो अजघन्य ही कहलाएगा। आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का अंतरकाल नहीं है। क्योंकि आयु कर्म की जघन्य स्थिति वो अंतिम अवसर जो है तब लास्ट में बांधेगा, फिर भी उसका अंतर नहीं होगा। अजघन्य स्थिति बंध का अंतर उत्कृष्ट के समान है। यानी अजघन्य का क्या होगा, दो अपकर्ष काल के बीच में जितना अंतर है उसको कहेंगे, और उत्कृष्ट कुछ कम छह महीने कहेंगे। आप देख रहे हैं क्या अरविंद भाई? हाँ बराबर है। हाँ चलो आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार अब ये जो कथन किया है कि जघन्य अजघन्य में कुछ अंतर नहीं है, ये बात कहाँ कहाँ घटित होती है? पहली पृथ्वी में, सामान्य देव में, क्योंकि असंगी वहां भी उत्पन्न होते हैं, बहुनवासी और वाण में अंतर देवों के जानना चाहेंगे। जहां जहां असंगी उत्पन्न, असंगी की अपेक्षा जहां जघन्य होता है वहां ये बात ले लें। वान व्यंतर, व्यंतर को ही कहते वान व्यंतर, वो उसका नाम है वान व्यंतर। दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जो डिफरेंस है वो अभी बता रहे, सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है, क्योंकि वहां जघन्य का स्वामी कौन है? तो सर्व विशुद्ध जी। हाँ, विशुद्ध जी, सम्य दृष्टि जो विशुद्ध जो है उसकी अपेक्षा है। शुरुआत में एक बार किया उसने और फिर लास्ट में किया तो उत्कृष्ट अंतर हुआ, और एक अंतर्मूर्त के अंतर से किया तो ये जघन्य अंतर हुआ, अंतर्मूर्त वाला। यहाँ केवल विशुद्धि इतना ही लिया, वहाँ उन्होंने विसंयोजना का नाम तो लिया नहीं है कहीं पर भी। अंतर्मूर्त में उसकी विशुद्धि फिर दोबारा बढ़ेगी तो उसका जगह नहीं होगा। तो जघन्य अंतर अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट अंतर अपनी अपनी स्थिति प्रमाण, अजघन्य स्थिति बंध का अंतर अनुत्कृष्ट के समान है। वह जघन्य का कितना होगा? एक समय के लिए जघन्य किया हो सकता है ना, या अंतर्मूर्त के लिए किया, तो एक समय से लेकर अंतर्मूर्त तक देख लेना, अनुत्कृष्ट का भी देख लो।
हाँ,
जघन्य किया उसने एक समय के लिए। अरविंद भाई देख रहे हैं पेज नंबर 60, अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त। वैसे यहाँ पर होगा एक समय और अंतर्मूर्त,
या फिर तो अंतर्मूर्त और कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण दी है, ये विशेषत्व दिए है ना
इसका।
द्वितीय आदि पृथ्वी में जगह अजगन्य स्थिति में कभी भी संभव है,
कहाँ के पद पूर्ण पढ़ रहे आप? कौन से पेज? पेज नंबर
71
में अभी हम नहीं आए हैं।
स्थिति पर वो विशेष आप खींचेंगे ना आपके कल विशेष आती है ना
ये तो पढ़ चुके हम जगन्य की पृष्ठ अंतर
नहीं एक समय हमने दिया
दर्शन दे रहे जो
लिखा हम अजगन्य का एक समय कह रहे हैं जगन्य का नहीं
या जगन्य अजगन्य दोनों का अंतर होते हैं यदि मैं अंतर हूँ तो कुछ कुछ का मतलब
अजगन्य का कहाँ लिखा है अंतर में नहीं द्वितीय पूरा पढ़ो आप पढ़ लीजिए आपके पास माइक है ना द्वितीय आदि पृथ्वियों में आप पढ़ना आगे
जगन्य और अजगन्य स्थिति में कभी भी संभव है
हाँ
इसी से इनमें जगन्य स्थिति में होता है जगन्य अंतर जगन्य
किसका
जगन्य स्थिति बंध का जगन्य अंतर
हाँ
तो वो अंतर
तो हमने पढ़ो देख ही लिया फिर अजगन्य का एक समय कहा है क्या हम अजगन्य की बात कर रहे हैं ख्याल में है बराबर है एक समय और अंतर में वे आगे पढ़ने गए ना तो उन्होंने जगन्य का ही पढ़ लिया हम अजगन्य की बात कर रहे हैं 60 पेज 60 ख्याल में यही बात देखो क्या बात हो रही थी सात कर्मों का जघन्य स्थिति बंध होता है कब होता है दूसरी से सातवें नरक में विशुद्ध अभी समय दृष्टि जो सर्व विशुद्ध है उसके होता है तो जघन्य किया और फिर वापस अजघन्य करके फिर जघन्य होने लगा तो उसके लिए अंतर्मूर्त तो लगेगा ही परंतु जो अजघन्य कर रहा है वो एक समय के लिए जघन्य कर सकता और वापस अजगन्य हो जाए ये उसमें बन सकता है तो उसके लिए अंतर कितना एक समय और अधिक से अधिक अंतर्मूर्त यानी लगातार जगन्य होता रहे ऐसा नहीं होगा अंतर्मूर्त तक ही जगन्य रह सकता है उससे अधिक नहीं परंतु अजगन्य तो लंबे पूरे स्थिति प्रमाण रह सकता है ना उसने जगन्य किया ही नहीं अजगन्य ही रहा ये तो हो सकता है तो नारकी में अजगन्य का अंतर करना है तो पहले भी अजगन्य था बीच में जाके कभी उसने जगन्य किया फिर अजगन्य शुरू हुआ तो कुछ कम करना पड़ेगा ना अंतर के लिए कुछ कम करना पड़ेगा
एक समय तो बड़ी किया नहीं
उन्होंने कहा है कि उत्कृष्ट के अनुत्कृष्ट के समान है अभी अनुत्कृष्ट पढ़ो
अब पढ़ा मैं अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम समय जाए
आप आयु में देख रहे हैं हम सात कर्मों की बात देख रहे हैं
आदेश में लास्ट के
आदेश में देखो अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है उत्कृष्ट अंतर कुछ कम वो तो आपने जो पढ़ा है वो आयु कर्म की बात है अब कहते कि लास्ट में इतनी विशेषता है कि प्रत्येक पृथ्वी में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट अंतर वो तो बाद में सात कर्मों के अनुत्कृष्ट की ऊपर गई ऊपर की लाइन में
सेकंड लाइन
में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर अंतर्गत यही बात अजगन्य पर घटित करनी है क्या है हम सात कर्म है उसके बारे में बात चल रही है आयु की नहीं अब विशेषांत पढ़ेंगे फिर दोबारा ये बात दोहराएंगे नरक में सात कर्मों का जघन्य स्थितिबंध असंगी चर जीव के प्रथम और द्वितीय समय में संभव है असंगी से जो आया है नरक में उत्पन्न हुआ है उसके हो सकता है यानी उसके हजार सागर के आसपास जो कुछ होगा हजार सागर उसे कम थोड़ा यथायोग्य और इसके बाद अजघन्य स्थितिबंध होता है यानी जघन्य नहीं होता फिर उसको इतना कम कभी नहीं होगा तथा जो असंगीचर नहीं है उसके सर्वदा अजगन्य स्थितिबंध होता है उसके अजगन्य ही कहलाएगा ये बात मात्र पहले नरक में हो क्योंकि वो पहले नरक में ही उत्पन्न हो सकता है इसी से सामान्य से नरक में सात कर्मों के जघन्य और अजगन्य स्थितिबंध के अंतरकाल का निषेध किया नरक इन जनरल अगर करेंगे तो जघन्य तभी होता है जो असंगी वहां उत्पन्न होता है विग्रह गति में दो समय के लिए तो ना जगन्य का अंतर होगा ना अजगन्य का आयु सामान्य से पहले बात हो रही है अभी आयु कर्म का जघन्य स्थिति बंध सबसे जघन्य आबादा काल के रहने पर होता है। ये तो नियम है, अभी पहले भी हमने अभी ये तो अपने ख्याल में आए, उत्कृष्ट के लिए उत्कृष्ट आबादा चाहिए, जघन्य के लिए जघन्य आबादा चाहिए। इसके बाद पुनः आयु कर्म का बंधन नहीं होता। तो एक बार जघन्य के करने के बाद वो भी अंतिम समय में, फिर आयु बंधन का कोई बात होगी नहीं। यही कारण है यहाँ आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध के अंतरकाल का भी निषेध किया है। अजघन्य स्थितिबंध का अंतरकाल उत्कृष्ट के समान यह स्पष्ट ही है, क्योंकि अजघन्य नरक में रहते हुए अजघन्य कब किया, पहले एक बार आयु का बंध किया, रुक गया, जो किया था वो अजघन्य था, वो रुका तो अंतर चालू हो गया, फिर दोबारा जाके उसने बंध किया तो अजघन्य बंध किया। तो दो अपकर्षण काल के बीच वाला जो अंतर है, मिनिमम अंतर मूल, ये क्या होगा, उसका जघन्य अंतर। और उत्कृष्ट अंतर कितना होगा, पहले बार छह महीने पहले एक बार किया और लास्ट अंतिम अपकर्ष काल में किया आठवीं बार, तो बीच में कुछ कम छह महीने अंतर रह गया, यानी अंतर मूल से लेकर कुछ कम छह महीने। यथा का अर्थ होता है क्योंकि असंगी जीव प्रथम नरक में तथा भवनवासी और व्यंतर देवों में उत्पन्न होता है, अतः यानी इसलिए प्रथम नरक सामान्य देव भवनवासी और व्यंतर देवों में सामान्य नरक के समान प्ररूपणा बन जाती है, यानी कथन वहां पर भी घटित होता है, यही कथन वहां पर भी घटित होगा। यही कारण है कि इन मार्गणाओं में सामान्य नरक के समान अंतरकाल कहा है। द्वितीय आदि पृथ्वियों में जघन्य और अजघन्य स्थितिबंध कभी भी संभव है, कभी भी हो सकता है, वो तो विशुद्ध बहुत हो गए तो जघन्य हो गया, फिर बाद में अजघन्य होने लगा। इसी से इनमें जघन्य स्थितिबंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त, जघन्य स्थिति करके वापस अजघन्य हो जाए तो इमीडिएटली एक समय में वापस जघन्य नहीं होगी, अभी वो तो उत्कृष्ट यानी वो तो जघन्य विशुद्धि थी, बहुत बड़ी विशुद्धि, फिर वो छूट गई तो अंतर्मूर्त, फिर उतनी विशुद्धि होने के लिए अंतर्मूर्त तो जाएगा ही बीच में, इसलिए अंतर्मूर्त के अंतर से वो जघन्य कर सकता। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण, क्योंकि उसने शुरू में पर्याप्त होने पर, पर्याप्त होने की जरूरत है, पर्याप्त होने पर उसने विशुद्ध होकर जघन्य किया, अंत में जाकर फिर वैसी विशुद्धि उसकी हुई तो उसने जघन्य किया, तो बीच वाला अंतर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति।
विशुद्ध होने के समय दृष्टि होना जरूरी है,
बिल्कुल, क्योंकि वह मिथ्या दृष्टि तो ज्यादा बंद करेगा, समय दृष्टि तो अंत कोड़ा कोड़ी करता ही है, और विशुद्धि के काल में उससे भी थोड़ा छोटा अंत कोड़ा कोड़ी हो जाता है, तो ये जरूरी है। स्वामित्व में हमने देखा था उसका स्वामित्व, देख लो आप,
उत्कृष्ट अंतर निकाला ना अपनी प्रमाण, मतलब उस पर्टिकुलर नरक में बिगनिंग में उसने समय दृष्टि हुआ,
हाँ।
और फिर उसने किया, फिर बाद में अंत में मिथ्या,
बाद में अंत में फिर दोबारा मिथ्या दृष्टि होने की जरूरत नहीं है, वो समय दृष्टि रखो ना उसको, कोई हर्जा नहीं, विशुद्धि उसकी फिर दोबारा बढ़ गई तब ले लीजिए।
इसमें एक चीज समझ आ रही पूरी मरणा में, एक बार तो अपन बोलते सामान्य से तो बोला कि जगन्य और अजगन्य का अंतर नहीं है, वहाँ भवनवासी और उसे असंगी की अपेक्षा तो बोल दिया मैंने पहले नरक में, लेकिन जब दूसरे नरक से बात की तो वो बोलते हैं कि हे वो अपने कारण भी अपन समझ गए, समझते विशुद्धि,
देखो वहाँ तो असंगी उत्पन्न नहीं होते,
दूसरे में होते नहीं,
होते नहीं तो दूसरे नरक के लिए जगन्य कौन सा होगा, वही अंत कोड़ा कोड़ी वाला जो समय दृष्टि कर रहे हैं और उसमें भी जो सर्व विशुद्ध है वही होगा। पहले नरक में वो कब था, तो विग्रह गति में था, असंगी विग्रह गति में असंगी के योग्य बंद कर रहा था, बाद में जो नारकी हुए सारे नारकी के योग्य बंद करने लगे, अंत कोड़ा कोड़ी करे तो भी वो अजगर नहीं कहलाएगा, हजार सागर तो नहीं होगा, समझ में, इसलिए पहले नरक में जघन्य अजघन्य का अंतर नहीं है, नीचे के नरकों में बन सकता है क्योंकि वो जघन्य अजघन्य कभी भी हो सकता है, उसके लिए किसी पर्याय से मरकर आए वो तो बात कोई वहां नहीं घटित होती है, इसलिए तो वहां तो रेगुलर लाइफ में उसका कभी भी होगा, तो शुरू में एक बार जघन्य किया, लास्ट में जाके एक बार जघन्य किया, तो जघन्य का अंतर कितना हुआ उत्कृष्ट। अपनी स्थिति में से कुछ कम कर दो, यहां उन्होंने अजघन्य स्थिति बंध का अंतर नहीं लिखा है, सात कर्मों के अजघन्य स्थिति बंध का विशेषार्थ में नहीं लिखा है। हमने कितना घटित किया था, एक समय और अंतर में, ये जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर अंतर में। अब आगे बढ़ेंगे, ये नारकियों की बात होगी, तिर्यंचों में घटित करेंगे। सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का जघन्य अंतर का अंतर्मुक्त है। अब मंजू आपको बताना है कि तिर्यंचों में सात कर्मों का जघन्य स्थितिबंध कौन करता है, पहले हम उसका स्वामित्व नक्की करेंगे तो आगे की बात हमें आसान हो जाती है। हाँ, पंचम पुनस्थान में
बादर,
कौन सा बादर,
पर्याप्त
बादर तो त्रस भी होता
है,
एक केंद्रीय बादर पर्याप्त, एक केंद्रीय बादर पर्याप्त। तो जघन्य स्थितिबंध का जघन्य अंतर का, यानी वो जघन्य स्थितिबंध करता है वो सुशुद्ध, क्योंकि तिर्यंचों में एक केंद्रीय ही जघन्य करता है। उत्कृष्ट करने के लिए संगीत पंचेंद्रिय को याद करना पड़ता है, परंतु जघन्य में जघन्य वो भले ही समय दृष्टि है, पांचों गुण स्थान वाला है, विशुद्ध वाला है, जो कुछ है उसका अंत कोड़ा कोड़ी तो होगा ही होगा, और इसका तो सागर का जो कुछ उससे ही कम हो जाएगा। तो जघन्य स्थितिबंध का जघन्य अंतर काल अंतर्मुख है। एक बार जघन्य करके दोबारा जघन्य करना है तो एक अंतर्मूल चला जाएगा बीच में। जघन्य जघन्य का काल एक समय हो सकता है, जघन्य का काल एक समय हो सकता है, हा? अभी अजघन्य का यहां नहीं कहेंगे क्योंकि ये मार्गना की बात है। तो यहां कहेंगे देखो, जघन्य स्थितिबंध का जघन्य अंतर काल अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण, यह हमने देखा था। जघन्य कौन करता है, तो बादर केंद्रीय पर्याप्त करता है, अब वो सूक्ष्म में चला जाए या अन्यत्र चला जाए तो क्या होगा, उसका असंख्यात लोक प्रमाण उसका, हाँ, उसका अंतर सिद्ध हो जाएगा, उसने फिर से दोबारा जघन्य किया ही नहीं। इसका अर्थ ये भी होता है कि तिर्यंचों में रहते हुए इतने काल में वो बादर केंद्रीय में जन्म लेगा ही लेगा। कितनी बातें सिद्ध होती है ना इस पर से,
मतलब सूक्ष्म में रहने का मैक्सिमम काल हो गया।
हाँ, सूक्ष्म में रहने का मैक्सिमम। केवल सूक्ष्म में ही रहने का नहीं, यह वो त्रस में भी चला जाएगा, त्रस में भी चला जाएगा, वहां तो बहुत छोटा काल है ना, यानी वो फिर त्रस और सावर, त्रस और सावर करता रहे तो भी इतने काल में फिर बादर एकेंद्रीय पर्याप्त में आएगा ही आएगा, ये बात यहाँ सिद्ध होती है। नहीं समझे,
त्रस में अगर चला गया वो और मुनि बन गया तो फिर तो वो तीर्थंकर और प्रकृति वगैरह उनका,
ये तिर्यंचों की बात चल रही है, तिर्यंचों की जब अंतर करना है तो वापस वहां पर लाना है। ओग में तो जघन्य हम चारों गति की बात करते हैं, वहां तो क्षपक श्रेणी में देते हैं जघन्य, वहां लेते हैं हम।
नहीं, मिथ्या दृष्टि की बात है, मिथ्यात्व में रहने का,
मिथ्यात्व में रहने
का काल तक असंख्यात लोग के पश्चात उसका जघन्य हो
पाए, समय दृष्टि नहीं होने देना
अपने हाथ में, क्या है
नहीं नहीं, समय दृष्टि हुआ तो भी अंतर घटित होगा ही, समय दृष्टि हुआ तो भी क्या हुआ, समय दृष्टि हुआ, हम अंतर देख रहे हैं, समय दृष्टि होगा और देव में चला जाएगा तो अंतर ही नहीं घटित होगा, उसकी तो बात नहीं, जिसके अंतर घटित होता है उसमें लगाना है। बीच में समय दृष्टि होकर भी मिथ्यात्व में आया तो असंख्यात लोक में तो वापस वो बंद करेगा ही करेगा जगन्नाथ। ये बात सिद्ध होती है। सम्यक तो हो गया और छूट गया तो भी ज्यादा टाइम उसको ऐसा नहीं है, उसमें भी ये काल घटित होता है। जैसे हम त्रस की बात करते हैं, त्रस में रहा है 2000 सागर हम कहते हैं, साधिक कहो या पर्याप्त की कहो, सम्यक दृष्टि हुआ क्या होगा, उपशम शनि चढ़ के उतरा क्या होगा, उसका त्रस पर्याय त्रस का काल पूरा होने को आया है तो ये वो बच जाएगा, वो तो क्या वो बच गए बच जाएगा, यानी समय दृष्टि नहीं होगा तो 2000 सागर में रहेगा ऐसा कुछ है। उपशम श्रेणी चढ़ के भी उतरा और अभी उसका मोक्ष नहीं हुआ है और 2000 सागर पूरे होने को आए हैं तो कहाँ चला जाएगा, सावर में चला जाएगा, देव में भी गया होगा तो मिथ्या तो में चला जाएगा, फिर सावर में जाएगा ही जाएगा, उसमें कुछ रहने कोई वशीले वजह नहीं चलेगी, अभी तो मैं समय दृष्टि हूँ। हाँ यथा योग्य है, जो उत्कृष्ट काल बिताता है उसके वहाँ पर भी चला जाएगा और काल, अभी सब कुछ हो तो यथा योग्य सहज रूप से होता रहता है, अलग अलग जीवों में क्या हो सकता है उसको हम यहाँ देख रहे हैं। तो अभी हम तिरियंचों की बात कर रहे थे, जघन्य स्थिति बंध का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोग, अजघन्य स्थिति बंध का अंतर ओहो के समान है, यानी जघन्य अंतर एक समय होगा,
वहाँ तो मतलब उपशम शमी मरण की अपेक्षा निकलते एक समय और ज्ञानोद स्थान से गिर के अपन अंतर निकाला था, एक समय अंतर वो भी निकाला था
तिरियंचों
में, तिरियंचों
में
नहीं
ओग के समान का अर्थ क्या है, उसका कथन उतना होगा क्या होगा, एक समय और अंतर होगा, एक समय के लिए क्या किया उसने अजघन्य के, एक समय के लिए जघन्य किया, अधिक से अधिक लंबा काल कितना रहा उसका, देखो निकालो निकालो ओग में निकालो, एक मिनट विशेषार्थ देखो,
विशेषार्थ जो जी
क्योंकि उनका जघन्य तो क्षपक के अंत में होता है और दसवें के अंत में अजघन्य हुआ था और ग्यारहवें में बंध रुक गया था इसलिए उसका अंतर घटित हुआ था। अब यहाँ अंतर कैसे घटित होगा, जो जघन्य का बंध कर रहा है उसका अजघन्य का अंतर होगा, वो एक समय के लिए हो सकता है, जघन्य का जो काल है वो अजघन्य का अंतर होगा, जिसे उत्कृष्ट एक समय के लिए हो सकता है, वैसे बाकी जो क्षपक की बात छोड़ दो, बाकी जो जघन्य है वो भी एक समय के लिए हो सकता है,
एक समय के
लगातार अंतर्मुख से अधिक नहीं रहेगा, ये बाद रह के जो जघन्य कर रहा है हो सकता है एक समय के लिए जघन्य किया फिर अजघन्य हुआ, इसलिए वो अजघन्य का अंतर कितना है तो एक समय होगा, और अजघन्य का लगातार अंतर तो कहते अंतर में उससे ज्यादा नहीं होगा, पेज 54 देख लो 54 तो पहले का भी जरा पक्का हो जाए ना, कहाँ है वहां पर और ये हम अंतर देख रहे हैं, जघन्य का काल एक है ना, एक देखो सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय और लगातार चलता रहे तो अंतर्मुख, और जघन्य का तिरियंचों में एक समय वहां घटित हुआ था जघन्य का, और जघन्य का एक समय वहां भी घटित हुआ था, अदरवाइज और जघन्य का अंतर्मुख तो होगा ही होगा, वहां एक समय क्यों लिया, क्योंकि तिरियंश में उसने बादर पर्याप्त में जघन्य बंध किया फिर एक समय में अब अजघन्य किया और मनुष्य हो गए, तिरियंश गति बदल गई, उसकी मार्गना बदल गई, तो हो सकता है अंतर के लिए उसको मार्गना बदल नहीं सकते, तो उसने अजघन्य करता रहा एक समय के लिए जघन्य किया वापस अजघन्य किया, मार्गना वही रही, अंतर में दो बार करना चाहिए, काल में तो भले आयु के अंत में किया और मर गया तो चलता है, अब तीर्यंचों में आयु कर्म के पढ़े ना आगे कि इसमें कोई प्रश्न है। आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का जघन्य अंतर एक समय कम क्षुल्लक भोगण, क्योंकि जब जघन्य बंध करता है तो उसी समय में नेक्स्ट भव में भी करेगा। एक क्षुद्र भव ने असंक्षेपाधा काल के पूर्व समय में उसने जघन्य आयु बांधी। अब कहते आगे वो जो जघन्य आयु बांधी क्षुद्र भव प्रमाण उसमें भी अंतिम जहां उसने वो असंक्षेपाधा के वो बाकी रखकर आयु बंधन के अंतिम समय में जघन्य आयु बांधी तो कितना हुआ एक समय कम क्षुद्र भव।
ऐसा कब तक चलेगा जब तक अपने मानते हैं कि जो अंतिम समय में बांधेगा दूसरे में भी बांधेगा
जघन्य आयु जघन्य आयु
दूसरे आयु में पहला हो गया तो तीसरे में भी तीसरे की अपेक्षा दूसरा पहला हो गया ना।
यानी आप लगातार ऐसा कोई जो कितने तो ऐसे ऐसे अंतर्मूर्त तक ही कर सकता है और ऐसे भव कितने होते हैं 66,336 भव हो सकते हैं। वही तो आपको मालूम है सर आप क्या भी पूछ रहे हैं
66,336
बिल्कुल कर रहे फिर भी वो अंतर्मूर्त काल होगा। यहाँ तो दो बार किया उसके बीच में कितना काल गया अंतर कितना गया तो क्षुद्र भव में एक समय कम इतना गया। यहाँ लिखा ना आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का जघन्य अंतर एक समय कम क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण और तिर्यंचों में रहते हुए उत्कृष्ट अंतर पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है। किसका जघन्य स्थिति बंध का उत्कृष्ट अंतर देखो आयु के जघन्य स्थिति बंध का उत्कृष्ट अंतर। अभी क्या किया उसने जघन्य स्थिति बंध किया लब्धि अपर्याप्त कर अब उसके बाद जब भी आयु का बंध किया तो
अजघन्य
किया
और पहले की असंख्या के बाद पश्चात वापस वो
शूद्रों
को
ग्रहण करी
यही घटित होता है।
ओग में हमने असंख्यात लोग देखा था
यहाँ पे ये बहुत छोटा
तिरंचों में एक इंद्रियों की मुख्यता से हाँ वो नहीं घटित होता है एक इंद्रियों की मुख्यता से जघन्य आयु बंध का अधिक से अधिक पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण काल तक नहीं होता आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का उत्कृष्ट अंतर काल पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण काल एक इंद्रियों की बात ली उन्होंने केवल क्योंकि वहां तिर्यंचों में चला जाएगा मान लेते तिर्यंचों में जघन्य आयु का बंध किया है
ये नियम ही हो गया नियम ये 408 पेज पर लिखा है नियम ही लिख दिया
408 निकाल
408 के पहले पहले आपकी नीचे से छोटी लाइन
तिरंचों में जो निरंतर एक इंद्रियों में परिभ्रमण करते रहते हैं मिला क्या 408 पेज पर पहले पैराग्राफ के नीचे से पांचवी लाइन, पीरियंचों में जो निरंतर एकेंद्रियों में परिभ्रमण करते रहते हैं उनमें तिरियंचायु का जघन्य स्थितिबंध कम से कम एक समय कम क्षुल्लक भोग ग्रहण के बाद और अधिक से अधिक पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल के बाद नियम से होता है।
नियम मतलब
निरंतर एकेंद्रिय में रहने वाले की बात।
तो पहले तो मैंने पूछा था एकेंद्रिय का जघन्य स्थितिबंधों का
इसलिए इनमें तिरियन चायु के जघन्य स्थितिबंध का जघन्य अंतर एक समय कम क्षुल्लक भोग ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट अंतर पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा है शेष कथन स्पष्ट है।
जो एकेंद्र में रहता उसके लिए
नहीं, उनका ऐसा कहना था एकेंद्रीय की अपर्याप्त की आयु बांध रहा है और कोई पंचेंद्रीय की बांध रहा है, क्षुल्लक भोग तो उन्होंने कहा तो उसको क्या क्षुल्लक भोग नहीं कहेंगे?
उसको भी क्षुल्लक भोग कहेंगे।
पंचेंद्रीय के लिया नहीं उन्होंने,
एकेंद्रीय की मुख्यता।
क्षुल्लक भोग में भी वेरिएशन हो सकता है,
बंधन में तो वेरिएशन है ही।
शुल्लक
भोग
आयु है उसमें भी
होता है, भी होते उसमें
तो
बंध की अपेक्षा हमने देखे थे मिनिमम बंध से मैक्सिमम बंध तक एक एक समय से बढ़ते हुए अलग अलग स्थिति बंध के भेद है क्षुद्र भवन में भी, यानी उसको क्षुद्र भव नहीं कहेंगे, लब्धि अपर्याप्त कब हो गए, क्षुद्र भव कब कहेंगे, मिनिमम बंध वाले को कहेंगे शायद। शुल्लक भोग नाम क्यों दिया उसको, उसमें भी वो बंधनीय अभी की अपेक्षा जीवनी की अपेक्षा पहली घात से उससे भी कम हो सकता है। यानी अगर कदली घात वहां होता है, समझे मैं क्या बताना चाहती हूँ, कदली घात होता है वहां कब हो सकता है, तो उसकी टू थर्ड आयु बीत जाने पर, तो वहां पर भी वो आयु का बंध करेगा तभी जब तभी तो कदली घात होकर मरेगा ना।
पहले कदली घात करेगा फिर आयु का बंध करेगा
नहीं, पहले कदली घात करेगा बराबर है, पहले कदली घात करता है बाद में ही कहीं पर भी। अभी ये मनुष्य में जो है कोई 100 साल की आयु बांध के आया, यदि आयु का बंध किया तो आबादा निश्चित हो गई, फिर वो कदली घात नहीं कर सकता, पहले कदली घात होगा
फिर
और फिर बाद में आयु का बंध।
देश
भर
में
नेक्स्ट भाव में
क्या होना,
अपकर्षण ही कौन सा अपकर्षण, कदली घात वाला अपकर्षण के घातायुष्क वाला अपकर्षण वो उसी भाव में होता है, नेक्स्ट भाव में नहीं। जिस भाव में आयु बंधी जाती है, आयु बंधने के बाद परिणामवश आयु घट सकती है, स्थिति घट सकती है, आबादा नहीं बदलेगी, स्थिति घटेगी।
कदली घात तो बुद्धिमान आयु में होता है
बिल्कुल,
और वो जो है अपने बंधिमान आयु में होता है घटने का अलग है,
वो अलग अलग, वो बिल्कुल अलग चीज है।
यहाँ पे हमने जो जगह काल लिया वहाँ पे पहली बार उसके बंधित सबसे पापा में बंधित किया और पश्चात उसने वो दूसरे भाव में सुलभ भाव में उसने कदली घात किया और उसके आगे बंधित
तब जगन्य नहीं करेगा, जगन्य के लिए कंडीशन ही जगन्य आबादा के साथ।
नेक्स्ट भाव पे जब उसने कदली घात किया और जब भी आयु बंध किया तो वो अपेक्षा वो छोटा काल हो जाएगा, अभी आयु बुद्धिमान आयु नेक्स्ट भाव की बुद्धिमान आयु चालू है और कुछ समय के पश्चात उसके
वो भी लब्धि अपर्याप्त वाला ही नहीं
है, पर उसके कदली घात
लब्धि अपर्याप्त वाला कदली घात कब कर सकता है,
टू थर्ड के पहले करेगा ना,
कैसे करेगा, उसकी कितनी पर्याप्ति पूरी होने पर कदली घात करेगा,
पर्याप्त
तो उसके लिए कुछ नियम तो होगा। तो उसका टू-थर्ड का नियम है। उसकी भी टू थर्ड के पहले आयु का बंध नहीं होगा, या टू थर्ड के पहले वो कदली घात भी नहीं करेगा। हमने पहले देखा था मिनिमम बंद है उसका 15 समय, 15 समय वाला तो वो तो उसका मिनिमम बंद है।
और आपने 12 लिया है
तो 12 जो है वो 15 जो कुछ ऊपर वाला जो कुछ 40-45 वाला उसने कदली घात करके वो नीचे तक आ गया, 12 वाला हो गया। और यहाँ स्थिति बंद की बात चल रही है। यहाँ देखो देखो हमारे तो कदली घात कब हो सकता है,
आयु का बंधन नहीं,
पर्याप्त होने के बाद अंतर्मुहूर्त में कभी भी हो सकता है। मान लेते करोड़ पूर्व की आयु बांध के आए, वो आपने जो जलचर की बात की थी अभी, करोड़ पूर्व की आयु बांध के आया है, 6 पर्याप्ति पूर्ण की अंतर्मुहूर्त में, उसके बाद अंतर्मुहूर्त बीत गया और तब उसका कदली घात हो सकता है। और कदली घात से वो तत्कालिक अंतर्मुहूर्त में मर भी सकता है, करोड़ पूर्व की आयु बांधी। परंतु अभी जो लब्धि अपर्याप्त है उसके तो पर्याप्ति पूर्ण होने का सवाल नहीं है। तो उसके टू थर्ड बीत जाने पर भी जो कदली घात भी हो सकता है तो उसके बाद हो सकता है, तब हो सकता है, यानी उसके यथायोग्य लब्धि अपर्याप्त के लिए उत्कृष्ट बांधी थी आयु वो वहां घट सकती है। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं तीरंचों में देख रहे थे 71 पेज, फिर से देखते आयु कर्म के तीसरी लाइन, जघन्य स्थितिबंध का जघन्य अंतर एक समय कम क्षुल्लक भोग ग्रहण प्रमाण है, और उत्कृष्ट अंतर पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। इन्हें लगातार एक इंद्रिय में रहने का काल लिया उसने। अब आयु कर्म के अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है, जो हम दो अपकर्ष काल के बीच में लेते हैं, और उत्कृष्ट अंतर साधित 3 पल्ले प्रमाण है। करोड़ पूर्व के आयु वाले तिर्यंच ने वंतर पूर्व कोटि बाकी थी तभी आयु का बंधक किया और बंद करके रुक गया, 3 पल्ले की आयु बांधी। अब 3 पल्ले की आयु वाला आयु का बंध कब करेगा, 6 महीने पहले, उसमें भी अंतिम अपकर्ष काल लेना उसका। तो वहां के 3 पल्ले में यहाँ के 1/3 पूर्व कोटि ऐड कर दी, तो वहां जो कुछ अंतर्मुहूर्त पहले उसने आयु बांधी होगी और ये साधिक में चला भी जाएगा, सब साधिक 3 पल्ले।
करोड़ पूर्व में जो आयु बांधी तो पहला समय छोड़ उत्कृष्ट आयु बांधा 3 पल्ले उत्कृष्ट आयु
उसकी अजगण्य, तो अंतिम समय के बाद लेना है, सारी अजगण्य ही थी, उत्कृष्ट भी अजगण्य ही, उत्कृष्ट आयु बांधी वो जघन्य है कि अजघन्य है, अजघन्य दूसरे समय में अजघन्य, तीसरे समय में अजघन्य, लगातार अंतर्मुहूर्त तक अजघन्य ही बांधी उसे, आयु बंद कर जब रुक गया तब उसका अंतर चालू हो गया, तो अंतिम समय के बाद में अंतर पूर्व कोटि के पहले अंतर्मुहूर्त में आयु का बंद होकर रुका, तो रुका तो उसका अंतर चालू हो गया, फिर 3 पल्ले में चला गया और वहां आयु के अंत में फिर आयु बंद किया। अभी वो देवायु बंद करेगा, वो कौन सी आयु बांधता है उसे न मतलब नहीं है, तिर्यंच में रहते हुए आयु का बंद किया इतनी बात।
जैसे कि
तिर्यंच
के लिए उत्कृष्ट करना 33 साल की होगी ना बंद, तिर्यंच के लिए, जैसे तिर्यंच के लिए उत्कृष्ट आयु बंद जो 7 साल रखी 33 साल
या 3 पल्ले लिया।
अरे अरे उसको तिर्यंच में रखना है, तिर्यंच में रहते हुए दोबारा आयु का बंधन नहीं करे ये कब तक होगा, यहाँ उस 33 साल का सवाल ही नहीं आता।
3 पल्ले को उत्कृष्ट आयु होता है इसलिए तिर्यंच के लिए उत्कृष्ट आयु
नहीं, तिर्यंच में रहने के लिए उसको तिरंज में से तिरंज वो बात यहाँ नहीं है। तिरंज में रहते हुए उसने आयु का बंधन नहीं किया ऐसा लंबे काल तक, तो उसने एक तिरंज भाव में आयु का बंधन किया, दोबारा तिरंज की उत्कृष्ट आयु बांधी। तो तिरंज की उत्कृष्ट आयु बांधी तो कितनी बांधी, तो तीन कल्य। और उस भाव ने उसने आयु के अंत में फिर दोबारा आयु का बंधन किया। अब वो कौन सी बांधता है उससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा अंतर यहाँ सिद्ध हो चुका, तीन पल्ले और कुछ वंतर पूर्व कोटि का जो कुछ है बाकी। पंचेन या तिरंज त्रिक में, ये तिरंज इन जनरल की बात हो गई, पंचेन या तिरंज त्रिक में सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। अब मंजूबेन आपका उत्तर बताना यहाँ, पंचेंद्रिय तिरंज त्रिक सात कर्मों का जघन्य स्थिति बंध कब करेंगे? अभी 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 पंचकर्म क्योंकि ये पंचेंद्रिय जीवन, तो उनकी विशुद्धि किसकी होगी, तो समय दृष्टि की, उसमें भी किसकी असंगी से जन्म लेने वाला बराबर है। पंचेंद्रिय तिरंज त्रिक में सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, यानी एक पंचेंद्रिय पर्याप्त की आयु, पंचेंद्रिय की आयु की ना उसने, पंचेंद्रिय तिरंज त्रिक में सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। तो यहाँ तो असंगी को भी लेना ना, असंगी में अंतर्मूर्त के अंतर से किया उसने, ये असंगी से आया हुआ वो तो असंगी पंचेंद्रिय में घटित होता है ना, नहीं असंगी में ही रहा है वो, असंगी जीव में ही घटित करना, यानी असंगी जीव, असंगी जीव उत्कृष्ट बंध हजार सागर का करता है, जगन्य कितना करता है, पल्ले का संख्या तो अभाव कम करता है, उसकी बात है। यानी अंतर, जैसे हमने एक इंद्रिय में देखा था अंतर्मूर्त के अंतर से जगन्य स्थिति बंध करता है, तो यहाँ पंचेंद्रिय के योग्य जगन्य करता है।
नहीं तो असंगी ने बंद किया, जगन्य बंद किया और
मर
के
असंगी
हो गया,
मर के उसमें उसी भाव में कहा ना उसने, करोड़ पूर्व का है,
उत्कृष्ट घटाने के लिए उसी भाव
में, उत्कृष्ट क्या बताया, अभी जगन्य घटाने के लिए वो, उसको मरने की बात नहीं है, उसने एक बार जगन्य किया फिर अजगन्य किया फिर जगन्य किया अंतर्मूर्त में, बस
असंगी में उत्कृष्ट के लिए,
उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्व प्रमाण है, अभी वो शुरू में असंगी में रखना, बीच में संगी के भाव करना, लास्ट में असंगी का करना, पंचेंद्रिय रहा वो
96
पूर्व कोटि,
लेकिन अंतिम भाव उसका असंगी है,
तो पहला भी और लास्ट भी, कुछ कम अजगन्य स्थिति बंध का अंतर ओगो के समान है, वह अजगन्य का अंतर ने एक समय और अंतर में, आयु कर्म के वो तो उसके अलग अलग होगी, योनिमति में अलग, यानी 96 पूर्व कोटि हो गए, या अकेले असंगी में रहेगा, अकेले असंगी की मार्ग नहीं है, पुरुषों में रहा ऐसे ना, पुरुष और न पुसक पर्याप्त में अच्छा
48
यानी वो तीन वेदों की बात है केवल,
वो तो ले लेंगे आधा हो जाएगा।
देखो देखो पहला जो लिया तो पंचनीय तिरंज जनरल, वहां बीच में अपर्याप्त का विभव किया, फिर पंचनीय तिरंज पर्याप्त लिया, पंचनीय तिरंज पर्याप्त में असंगी के तीन वो और संगी के तीन वो आठ आठ वाले तो 48 हो गए। कुछ कम उत्कृष्ट स्थिति पंचेंद्रित्रिक है, पहली बार लिया उसको पंचेंद्रिय तिर्यंच में लिया, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त में जब कहेंगे तो 48 के बाद बीच में जब हम अंतर्मूर्त का भाव करते अपर्याप्त का वो नहीं ले सकते, तो पर्याप्त में 48 ही लेना। और योनिमति में
16
हो गए,
बीच में अपर्याप्त कर लेगा
नहीं, नपुंसक वेदी हो जाएगा संगी असंगी के, संगी के छह आठ और असंगी के आठ अपर्याप्त नपुंसक 96 में सामान्य यानी पंचेंद्रिय तिर्यंच बस इतना ही गया, उसमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनों हो गए।
अपर्याप्त नपुंसक वेदी है
बिल्कुल, लब्धि अपर्याप्त सारे नपुंसक वेदी है। ये आगे पढ़ेंगे अभी, आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का जघन्य अंतर क्या हो गया, पंचेंद्रिय तिर्यंच में सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक को प्रमाण है, और जघन्य स्थिति बंध का अंतर रोग के समय ने हमने देखा था ना एक समय और अंतर्मूर्त, आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का जघन्य अंतर एक समय कम क्षुल्लक भोग्रहण प्रमाण तिर्यंच इन जनरल है वो तो घटित होती है, और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक को प्रमाण है पंचेंद्रिय त्रिक, त्रिक लेंगे तो बीच में एक अपर्याप्त क्या हो गए ना 96 लेंगे तो लब्धि अपर्याप्त का हो गया बीच, परंतु वो एक इंद्रिय का नहीं लिया ऐसे अगर
सामान्य
तो सामान्य में एक लब्धि अपर्याप्त का भाव आ गया बीच में तो पूर्व कोटि में वो तो 48 लेने पड़ेंगे 96 में बीच में एक लब्धि अपर्याप्त का भाव आता है तो वो तो जगह में हो जाएगा ना, उसका जगन्य आयु बंद करने की बात चल रही है, उसने जगन्य किया नहीं ऐसा कहना, लब्धि अपर्याप्त का जो भाव बांधता है उसमें जगन्य से उत्कृष्ट तक जो वेरिएशन है वो हो सकता है। हाँ ये बात सही है, पंचेंद्रिय अपर्याप्त की भी आयु जगन्य उत्कृष्ट अलग अलग होती है, तो ये जगन्य उसने नहीं बांध दिया ऐसा ले। अभी कुछ विशेषता बताने पूर्वकोटी बताए, अजघन्य स्थिति बंध का आयु के अजघन्य स्थिति बंध का अंतर अनुत्कृष्ट के समान है, अजघन्य स्थिति बंध का कम से कम अंतर अंतर्मूर्त होगा दो अपकर्ष के बीच में, इतनी विशेषता है कि पर्याप्त और योनिनी जीवों में आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का अंतर काल नहीं है, इसका अर्थ होता है वही आयु बांधनी चाहिए, इन्हें पर्याप्त जीव अपर्याप्त की आयु बांधते उसको नहीं लिया यहाँ। जब पर्याप्त कहे तो उसका अंतर नहीं होगा, वो अपर्याप्त में चला जाएगा, आयु बांधेगा उसकी मार्गना बदलेगा, और अंतर कब घटित करना है वापस उसमें आना है, उसको वापस वो बंद करना है। एक बार बंद किया जघन्य का तो उसकी उपलब्धि पर्याप्त में चला जाएगा, फिर दोबारा बंद कब करेगा, वो पर्याप्त ही नहीं रहेगा, मार्गना बदल जाएगा।
यूनिनी में भी ऐसा ही है, उसकी भी
तथा जघन्य स्थिति बंध का अंतर प्रकृति बंध के अंतर के समान है।
आयु
का हाँ हाँ आयु का में अजघन्य स्थिति बंध का अंतर यानी मिनिमम अंतर मुहूर्त ऐसा कुछ नहीं है, अजगण्य कोई भी कर सकता है ना, हाँ पंचेंद्रिय त्रिकमत ऊपर तीन इंच इन जनरल में हमने देखा था, अजगण्य का अंतर ओ के समान है ऐसा देखा था, अजगण्य का जगण्य अंतर अंतर्मूल उत्कृष्ट अंतर साधिक तीन पल्ले का है। जघन्य स्थिति बंध का उत्कृष्ट अंतर अगर पर्याप्त योनि में भी घटित हो सकता है,
यानी
पूर्व भूमि में उसने आयु बांधी, फिर तीन पल्ले में आयु नहीं बांधी, फिर लास्ट में जाके बांधी,
दो तीन पल्ले किसका अंतर घटित हुआ
है, आयु बंध के अजगण्य स्थिति बंध का उत्कृष्ट अंतर,
तो तीन पल्ले वाला आयु तो कहा दे दे वही बांधेगा अंतिम बांधेगा
वो कुछ कौन सा आयु बांध रहे कौन सी बांध रहे उससे कुछ मतलब नहीं।
सभी अजगण्य ले ली, तीन पल्ले भी अजगण्य हो गए, 10,000 की अजगण्य हो गई,
जो जघन्य नहीं वो सारा अजघन्य है। पंचेन्द्रिय तिरियंच अपर्याप्त कौन है, सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। अब पंचेन्द्रिय तिरियंच अपर्याप्त के लिए जितनी आयु का बंध हो सके, आयु की नहीं बात सात कर्मों की बात है, तो उसमें जो जघन्य बंद करेगा फिर अजघन्य करेगा और अंतर्मूर्त के बाद फिर उसका जघन्य हो सकता है, ये बात यहां बता रहे। उत्कृष्ट अंतर भी अंतर्मूर्त ही है, क्यों नहीं लगातार उसके अपर्याप्त भव रहे तो भी अंतर्मूर्त ही है। अजघन्य स्थिति बंद का अंतर रोग के समान है, एक समय और अंतर्मूर्त। आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का जघन्य अंतर एक समय कम क्षुल्लक भोग ग्रहण प्रमाण है, यहाँ भी उसको भी क्षुल्लक भोग कहा ना, इसका अर्थ क्या है क्षुल्लक भोग जहाँ कहा, और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है क्योंकि वो अपर्याप्त रहने चाहिए, जो उसने बंध किया था
आयु
वो आयु बड़ी बांधी लगातार अपर्याप्त रहा तो लास्ट भव ने फिर उसने जगह
नहीं आयु का दो भव में बंद होगा ही ना दोनों भव, एक
जगन्य की बात नहीं चल रही जगन्य की चल रही।
अच्छा जगन्य का उत्कृष्ट अंतर बड़ा हो जाएगा,
देखो आयु कर्म के जगन्य स्थिति बंध का जगन्य अंतर एक समय कम क्षुल्लक भव और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, यानी उसने जघन्य नहीं बांधी बीच में थोड़ी ज्यादा बांधी लास्ट में लगे, यानी कम ज्यादा आयु बनती है उसने वो मिनिमम वाली नहीं बांधी थोड़ी ज्यादा बांधी, फिर अंतर्मूर्त लगातार उसी पर्याय में यानी काय स्थिति चल रही, लास्ट में जाके फिर उसने जगत निकाल दिया।
ये जो नियम अपन अभी सोचा था कि पहले गांव में उसने बांधी, उसी समय पर दूसरे में बांधेगा तब तो एक समय कम निकालता है, ऐसे चलता रहेगा तो अंतर्मूर्त चल जाएंगे। अब यहाँ उत्कृष्ट आया इसका मतलब अपन ये मान रहे हैं कि दूसरे गांव में जगत नहीं बांधी,
जगत नहीं बांधी,
जगत नहीं बांधी,
जगत नहीं बांधी, क्योंकि उसके भी वेरिएशन है, लब्धि पर्याप्त के जो भाव है उसके भी जो आयु है, स्थिति के भेद वहां पर भी है, मिनिमम से मैक्सिमम तक।
अगर एक ही होते तो
उतना ही रहता ना,
तो दोनों
अलग अलग। अजगण्य स्थिति बंद का जगन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुक्त है,
ये तो दो भाव के बीच में,
दो भाव के बीच में। इसी प्रकार त्रस और स्थावर सब अपर्याप्तकों के जाना, देखो सभी अपर्याप्तकों के लिए यही बात हुई, एक समय कम क्षुद्र भाव वगैरह वगैरह, इतनी विशेषता है मनुष्य अपर्याप्तकों के, सात कर्मों के जघन्य और अजघन्य स्थिति बंध का अंतर काल नहीं है। यहाँ असंगी कहाँ आई? अच्छा आप वहाँ उत्पन्न होने वाले जीव की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ असंगी से आए, इसलिए वह अंतर घटित नहीं होता। तीन इंचों में तो घटित किया, हाँ कहीं पर असंगी यानी एक इंद्रिय से असंगी तक के सारे असंगी के असंगी का, हाँ पंचेंद्रिय से नहीं, अच्छा असंगी पंचेंद्रिय से, एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक का कोई नहीं है। हाँ
कितना भी कम लेकिन करेगा वो असंगी के।
मनुष्य त्रिक में सात कर्मों के जघन्य और अजघन्य स्थिति बंध का अंतरकाल नहीं है, जब मनुष्य त्रिक कहते हैं तो श्रेणी में देखा
तो अजघन्य का भी अंतरकाल नहीं पता है, हमने देखा ना एक समय
मनुष्य त्रिक में सात कर्मों के जघन्य और अजघन्य स्थिति, हाँ
अजघन्य स्थिति बंध का अंतरकाल
अभी घटित करो, एक समय कैसा होगा
मनुष्य
तो हाँ,
हाँ,
ले ले
अच्छा वो मरण
क्या होगा,
मरण
होगा मार्गणा मनुष्य की नहीं रहेगी, मनुष्य की मार्गणा करनी है तो अंतर्मूत रखना पड़ेगा, ग्यारह गुण से वापस लौटा ना तो मनुष्य का मनुष्य रहा, आप स्वयं ही उत्तर दे रहे देखो, मनुष्य त्रिक में सात कर्मों के जघन्य का अंतर नहीं हो तो ठीक है, अजघन्य स्थिति बंध का अंतरकाल नहीं है,
अंतर तो बंद नहीं किया वो फिर करने लगे जगह, ये बात समझ नहीं आई है।
लक्षण श्रेणी में होगा ना,
अभी देखा ना,
हाँ ओग में भी हमने देखा था
ना, देखा ना तब वहाँ पे एक समय करता है वो यहाँ पे करते थे जगन्य का, जगन्य एक समय देखा था
नहीं वो जगन्य
यहाँ घटित नहीं होगा तो मागना बंद हो जाएगी,
अंतर्भूत हो जाएगा
अंतर्भूत, ये ग्रंथ अजगन्य का जगन्य और अजगन्य सेम ही होता है अंतर्भूत, सात कर्मों के अजगन्य का
जगन्य का तो अंतर नहीं है,
दोनों अंतर्मूर्त है,
जगन्य का अंतर्मूर्त
नहीं अजगन्य हो गया, अजगन्य के जगन्य का और अजगन्य दोनों का काल अंतर्मूर्त है, ये लिखना चाहिए समान हो गया, ये
ऊपर उन्होंने लिया मनुष्य तीन सत्तान कम जघन्य अजघन्य नख्य अंतरम आयु कर्म के स्थितिबंध का अंतर पंचेंद्रिय तिरंचों के समान है। अभी हमने देखा ना पंचेंद्रियों में तीन इंच पंचेंद्रियों में हमने देखा था आयु कर्म में एक समय कम क्षुद्र भव क्रम नहीं मनुष्य त्रिक में तो वो घटित नहीं होगा ना उसने किया तो वो उसमें चला जाएगा फिर वापस लौटकर वो उसमें आना चाहिए मनुष्य त्रिक नहीं होगा फिर आयु कर्म के स्थितिबंध का अंतर पंचेंद्रिय तिरंचों के समान है पंचेंद्रिय तिरंचों में जघन्य अंतर अंतर्मूल देखा था जघन्य स्थितिबंध का जघन्य अंतर अंतर्मूल देखा था सामान्य मनुष्य में तो घटित
होगा मनुष्य पर्याप्त में तो अंतर्मूल क्योंकि दो अंतर्मूल तो अभी आयु जघन्य और
उत्कृष्ट पूर्व कोटि पृथक
मनुष्य भी सकते हैं मनुष्य भी मनुष्य भी
मैं मरकर मनुष्य नहीं हुआ
दो बार मनुष्य
नहीं उसको मनुष्य नहीं की आयु बांधनी है उस संबंधी आयु बांधनी है यानी हम जो विचार करते हैं ना मनुष्य लब्धि पर्याप्त अन्य भी आयु बांधेगा उसकी बात नहीं उसको उसी पर्याय की आयु बांधनी है ज्योतिषियों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक अंतर उत्कृष्ट के समान है उत्कृष्ट के बदले जघन्य लगाना अनुत्कृष्ट के बदले अजघन्य लगाना इसका विशेषार्थ कल पढ़ेंगे थोड़ी रिवीजन भी हो जाएगी जावानी के ज्ञान ते सुझे लो कालो सो नमो सदा देतमो